તારીખ 31/12/1991 શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રના 6 પદ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 96.
संशोधन व्यक्ति भौतिक सिस्टम से वो करते हैं, जैसे उन लोगों ने विचार किया कि आत्मा को कुछ वेट होता है कि नहीं होता है, अपन निर्णय करें। तो एक कांच की पेटी में या बॉक्स में एक कबूतर को, एक मशीन, एक ऐसे प्राणी को अंदर को रख लेते हैं, फिर उसको वैक्यूम कर लेते हैं, हवा खींच लेते हैं, वैक्यूम बना लेते हैं, समझ गया कि हवा नहीं मिलने से प्राणी तो मरने वाला है। फिर उसको तराजू पर, बैलेंस पर रख लिया पहले से ही कि जब ये प्राणी जिंदा है, पेटी समेत उसका वेट है, वो तो जिंदा में उतना वेट है, वो बताता है, स्केल फिगर आता है स्केल में, इलेक्ट्रॉनिक होता है। अभी वो मर गया धीरे धीरे करके, निश्चित देख लिया कभी वो जिंदा नहीं है, तो वेट में क्या फर्क पड़ा? तो कभी वेट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कभी वेट बढ़ जाता है, कभी वेट घट भी जाता है, क्योंकि ये तो परमाणु का वेट होता है। तो परमाणु ऐसे परिणमित होते हैं कि कभी मुर्दा भारी हो जाता है, कभी मुर्दा सब जो है वो हल्का हो जाता है, दोनों प्रकार बनता है। तो डिसाइड नहीं कर सके कि वेट है कि नहीं है आत्मा का। तब हमारा शास्त्र ये कहता है, जिसको आत्मा का ज्ञान है कि आत्मा को वेट होता ही नहीं, ये स्पष्ट उनका पर्याय है। हल्कापना भारीपना आत्मा को नहीं होता, ठंडापना गर्मपना आत्मा को नहीं होता, ये तो स्पर्श गुण की पर्याय है। आत्मा में स्पर्श गुण नहीं, वो तो पुद्गल जड़ में है। भौतिक दृष्टि का संशोधन इसमें कामयाब नहीं होता, इसलिए उनको कोई पता नहीं चलता। पर अध्यात्म दृष्टि है नहीं, और अध्यात्म दृष्टि से समझने की योग्यता भी उन लोगों की नहीं है, तो विजन ही उसके पास नहीं आती। अपने लोगों को भी तकलीफ पड़ती है आत्मा को समझने के लिए, इतना हम तो हम लोग श्रद्धावान हैं, फिर भी हमको भी तकलीफ पड़ती है। तो उनको तो बहुत जीवन, उसका तो बदल के साथ भौतिक जीवन बहुत तीव्र है उन लोगों का, तो वो तो समझ ही नहीं सके। इसलिए किसी भी संयोग से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी संयोगिक द्रव्य से कितना भी परमाणु को मिलावट करे, चेतन सत्ता प्रकट होने योग्य नहीं है। कितने भी परमाणु का किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जाए, उसमें चैतन्य सत्ता उत्पन्न होने वाली नहीं है। ये कंप्यूटर में भी नहीं, और क्या मानव यंत्र मानव बोलते हैं, रोबोट में भी नहीं, चेतन सत्ता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। रोबोट आदमी को चैतन्य को नहीं बनाएगा, चैतन्य है वो रोबोट कैसा है वो जानता है कि रोबोट कैसे बनता है, लेकिन रोबोट नहीं जानता कि मैं कैसे बनता, ना आदमी का उसको चैतन्य का ज्ञान है, ये परिस्थिति है। चलता है, लेकिन ये अंधश्रद्धा है। क्या अंधश्रद्धा है? देखिए, मॉडर्न साइंस ये बात का तो स्वीकार आज भी करता है कि कोई परमाणु नया बना सकते नहीं, तुम तो नहीं बना सकते, लेकिन एक परमाणु को नया नहीं बना सकते। मैं एक परमाणु का टोटल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको पूरा नाश नहीं कर सकते, परमाणु अवस्था से अवस्थांतर होगा, लेकिन नया पैदा करना या पूरा नाश करना ये संभव नहीं है, ये तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। फिर सृष्टि को बनाई ये बात कहाँ से आई? एक परमाणु जब नहीं बन सकता तो पूरा विश्व बनाने की बात आई कहाँ से? इसलिए आत्मा अनुत्पन्न है और संयोगी होने से अविनाशी है, क्योंकि संयोग बिखरते हैं, ये तत्व बिखरता नहीं है कहीं भी, क्योंकि जिसकी किसी संयोग से उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसी के विषय नाश होना, कहीं भी उसका विनाश होना वो भी संभव नहीं होता। ये लॉजिकली आत्मा नित्य है ऐसा सिद्ध किया है इस पत्र में, इस पैराग्राफ में आत्मा नित्य है इसका लॉजिक दिया है कि जब इसकी उत्पत्ति नहीं होती तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। तो सीधी बात, स्वाभाविक बात। तीसरा कि आत्मा करता है, सर्व पदार्थ कुछ न कुछ क्रिया करते ही रहता है, मैंने क्रिया संपन्न है शब्द ये पढ़ा है, सभी पदार्थ क्रिया संपन्न है। मकान बनता है तो कोई कहते हैं कि इसने बनाया है, लेकिन फिर 20 साल के बाद वो पुराना दिखता है तो पुराना हुआ या पुराना बनाया? नया तो बनाया लेकिन पुराना बना सकता है क्या? कि पुराना कोई बनाता नहीं है, पुराना स्वयं होता है, और स्वयं होता है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कोई मकान पुराना होता है तो उसको नया ही रख लेगा तो क्या, तो पुराना होना वो चाहते नहीं कि हमारा मकान पुराना हो जाए। लेकिन क्रिया संपन्न होने से, स्वयं क्रिया संपन्न होने से उसको पुराना होने को रोक सकते। किसी न किसी परिणाम क्रिया सहित ही सभी पदार्थ देखने में आता है, मैंने हर समय परिणाम का जो रिवॉल्यूशन है वो चालू ही चालू है हर पदार्थ का। विश्व में कोई पदार्थ अपने परिणाम के चक्कर के बिना नहीं हुए ऐसा नहीं बन सकता, परिणाम चालू हो जाता है परमाणुओं का और जीवों का। अपना जीव का अनुभव करे तो उसमें भी एक विचार है, दूसरा विचार है, तीसरा विचार है, परिणाम चालू चालू दिखने में आता है। ऐसे दूसरे भी सभी पदार्थ में जो फेरफार स्वयं होता हुआ देखने में आता है, ये बताता है कि सभी पदार्थ स्वयं क्रिया संपन्न है। आत्मा भी क्रिया संपन्न है, क्रिया संपन्न है इसलिए करता है, क्रिया का करने वाला को कर्ता कहते हैं। वह कर्तापना तीन प्रकार से श्री जीवदेव ने कहा है, परमार्थ से जो क्रिया है वो आत्मा की क्रिया तीन प्रकार की, कर्ता ने तीन बात लिया है, परमार्थ से स्वभाव परिणति निज स्वरूप का करता है। परमार्थ से मैंने आत्म कल्याण की दृष्टि से देखें तो जैसा स्वभाव है ज्ञान आनंद सुख शांति वैसा ही उसकी स्थिति को बने, ये सफल कार्य है आत्मा का। परमार्थ से स्वभाव परिणति से मैंने स्वभाव परिणाम रूप से देखे तो निज स्वरूप का मैंने जैसा स्वभाव है ऐसा ही परिणाम को करता है, उसी को धर्म कहते हैं। क्या? जैसा आत्मा का स्वभाव वैसा ही उसका शुद्ध परिणाम, अविकृत परिणाम, विकारी परिणाम नहीं अविकारी परिणाम, उसको धर्म कहने में आ रहा है। उत्थू सहावो धम्मो, ये धर्म की परिभाषा है, बाकी सब रूढ़ी की बातें हैं। धर्म की सही परिभाषा यही है जो मैंने आपको पालन ने बताई। व्यवहार से यह आत्मा द्रव कर्म का करता है, क्या? व्यवहार से वो कर्म बांधता है, जैसे पुण्य का परिणाम करता है तो पुण्य कर्म का बंधन उसको होता है, पाप पाव करता है तो पाप परिणाम का भी बंधन होता है, तो उसको कर्म का कर्ता कहने में आता है। अपने व्यवहार में इस कर्म को नसीब कहते हैं, क्या कहते हैं? नसीब कहते हैं। ये भी एक विद्या है, ज्योतिष विद्या, जो भूतकाल की बात भी बता सकता है और भविष्य की बात भी बता सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा कर्म को बांधता है, पहले उसने ऐसा कर्म को भोगा है, आगे वैसा कर्म को वो भोगेगा। दोनों बात ज्योतिष विद्या बता सकती है। आज भी भले अभी इसका समझने वाला कम लोग है, लेकिन बता तो सकते हैं। मेरा एक छोटा भाई है, 5वां नंबर का है, तो उसमें अच्छा दिमाग लगाता है ज्योतिष में। प्रोफेशनल नहीं कर पाए है, तो साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट का साउथ रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है, जैसे पेट्रोलियम का देहरादून में है, जैसे हवाई में है मैकेनिकल साइड का, ऐसे भावनगर में सॉल्ट का है, समुद्र के किनारे सॉल्ट आता है, तो उस पर काफ़ी संशोधन चलता है, उसमें साइंटिस्ट है, दिमाग उसका तेज है थोड़ा, तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जो है उसमें ज्योतिष में रखी। बहुत लोग आते हैं गाँव में, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, जरा दिखा दो। क्या है, लोगों को टेंशन बहुत है आजकल, और भय तो हमेशा हर प्राणी को सताता है, चाहे राजा हो, सत्ता वाला हो, या कुछ भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो। क्या भय लगता है कि नहीं लगता है तुम्हें? किसका लगता है बताओ? है, आत्मज्ञान करना है, वरना नहीं करे तो किसका भय है? भय लगता है किसका लगता है, मतलब किस चीज का भय लगता है, है? क्या बोलता है? क्या मैं क्या करते हो आप? उनको मारते हो, डांटते हो, क्या करते हो? सच्चा का भाई लगता है, देखो सच्चा बोलता है, झूठा नहीं बोलता है। रास्ते में चलते हैं, हैदराबाद के रास्ते में, तो एक्सीडेंट का भाई लगता है, लड़का आपस में झगड़ते हैं तो मारने का भाई लगता है, क्या क्या भाई लगता है, हैं? हर एक प्रकार के भाई लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बच्चे को बच्चे का जिस प्रकार का उदय होता है, ऐसा भय लगता है उसको। तो ऐसे भय का निवारण हो जाता है, भय के लिए क्या तनाव आता है, टेंशन आता है, और आगे पीछे क्या होने वाला है पता नहीं है, तो फिर जाते हैं ज्योतिष के पास। देखो मेरा कुंडली निकालो, मेरा हाथ देखो, बताओ इसका कोई इलाज है क्या? अपने इलाज भी कर रहे हैं, आगे से पता चल गया तो मैं पहले से प्रोविजन कर लूंगा, लेकिन हो सकता नहीं, लेकिन ऐसा मान करके चलो जाते हैं। थोड़ा अपना टेंशन दूर करने के लिए भी लोग आते हैं। मैंने कर्म का करता है, चौथा पद है कर्म का, आत्मा बोलता है, जो जो क्रिया है वो सभी क्रिया सफल है, जो क्रिया सभी है वो, कोई क्रिया निष्फल नहीं है। वैज्ञानिक होने से, विज्ञान होने से कोई क्रिया निष्फल नहीं जाती, निरर्थक नहीं है। जो कुछ भी करने में आता है उसका फल भी भोगने में आवे, ऐसा प्रत्यक्ष में हो गया है। ये एक्सीडेंट क्यों होता है, हम उसको एक्सीडेंट कहते हैं, वास्तव में एक्सीडेंट नहीं है, तो उसी वक्त ऐसा फल भोगने का इस जीव का टाइम आ चुका था, इसलिए उसका काम हुआ ऐसा। कुदरत के वहां देर भी नहीं और अंधेर भी नहीं। लोग कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन वो बात भी सही नहीं है, देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। राइट टाइम पर राइट फल आए बिना रहने वाला नहीं है, जैसा जिसका प्रयास तो ये क्या हो उससे क्या, जैसे आयु खत्म होता है तो किसी भी अवस्था में आयु खत्म होता है कि नहीं, खाते खाते बात करते करते चले जाते कि नहीं, क्यों? उतना ही टाइम लेकर के वो आया था, मनुष्य पर्याय का उतना ही उसका संबंध था, बस बात खत्म। फिर उसको रोकने के लिए इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कुछ नहीं कर सकते, जिनेंद्र अपना आयु को भी न बढ़ा सकते हैं न कम कर सकते हैं, न तो बढ़ा सकते हैं न तो कम सकते। सुसाइड करता है वो आयु उसको घटाता है क्या? जहर खाता है ना बच जाता है, जब इसका आयु होता है तो इसका जो स्टमक है भोजरी उसको बाहर फेंकता है, वॉमिट हो जाता है, उसको वॉमिट नहीं करना हो जानबूझ के जहर खाया हो मर जाना है तो। लेकिन इसका आयु होता है तो आयुष्य के हिसाब से तो परन एलिमेंट है पॉइजन तो बाहर फेंकता है, आयु पूरा हो गया तो व्याप हो नस नस में पहुंच जाएगा मर जाएगा, वायु है बाहर फेंकेगा आदमी जिंदा मरने वाला। तो ऐसा जो भी कर्म किए हैं इसके भोगने का अवश्य होता है। विष खाने से विष का फल, साकर खाने से साकर का फल मैंने अच्छा लगता है, अग्नि स्पर्श से अग्नि का फल और बर्फ के स्पर्श से बर्फ का फल, जैसे वो बिना नहीं रहता वैसे ही कषाय और अकषाय आत्मा को दिया है। आत्मा कषाय करता है उसको इसका फल मिलता है, आत्मा अकषाय परिणाम में शुद्ध स्वभाव में परिणमता है वितराग भाव से तो उसका भी फल मिलता है। जो भी कैसा परिणाम है आत्मा का प्रवर्तित होता है वैसा फल भूमि योग्य ही है और होता ही है, उसमें प्रकार को नेता किसी का अधिकार नहीं है। एक ये कुदरत की व्यवस्था है, मैंने वस्तु का स्वरूप है उसको कोई बिता सकते नहीं। इसलिए आत्मा कर्ता होने से भोगता है, कर्ता होने से भोगता है, ऐसी बात सीधी नहीं है, कर्ता होने से भोगता है, अपना किया हुआ कर्म इसलिए भोगता है। पांचवा पद है मोक्ष पद। जीव ने जो भी कर्म किया वो आगे बताया, उस कर्म का भुक्तापना भी आगे बताया। अब कहते हैं कि उसका वो जो कर्म है उसका नाश करना ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कषाय आदि का तीव्रपना होता है और उसका अभ्यास से उसका अपरिचय अनभ्यास से उसका अपरिचय से उसको उपशम करने से इसका मंदपना भी दिखने से क्या है कि कषाय से कर्म बनता है तो कषाय तीव्र भी होता है और कषाय मंद भी होता है, और जब तीव्र मंद होता है तो क्षीण भी होता है अभाव भी होता है। उस मंद भाव क्षीण होने योग्य है इसलिए इससे रहित मैंने कर्म भाव से रहित ऐसे ऐसा जो शुद्ध आत्म स्वभाव उस रूप परिणाम होना उसी को मोक्ष पद कहते हैं। मोक्ष पर हो निज शुद्धता आत्मशुद्धि में वो पद लिया कि मोक्ष पर हो निज शुद्धता आत्मा की परिपूर्ण शुद्धि परिणाम में हो उसको मोक्ष कहने में आता है, उसको संपूर्ण सुख भी कहने में आया है। छठा पद वो मोक्ष का उपाय भी है, यद्यपि कर्मबंध हुआ ही करे पर उसका नाश संभवित नहीं हो गए और कर्मबंध से विपरीत स्वभाव वाला ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र वैराग्य भक्ति आदि साधन भी प्रत्यक्ष है तो उस साधन के बल से कर्मबंध शिथिल होता है उपशम होता है नाश होता है, इसलिए ज्ञान दर्शन संयम आदि मोक्ष पद का उपाय संक्षेप में ले लिया। आत्मज्ञान करे आत्मदर्शन करे तो उसको मोक्ष का मार्ग कहते हैं मोक्ष का उपाय कहते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे ये छह पद संक्षेप में इस पर कोई बात और विशेष प्रश्न लिखा हो उन्होंने लिखा है कि अनूप स्वरूप ऐसे विभूत व्यवहार में से ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने शास्त्र करो ऐसा पढ़े नहीं, क्योंकि ये लोग अनुपसार और असद भूत में क्या समझे ऐसे नहीं उपाय देव की भाषा साफ कर दिया। उन्होंने तो नए से बात किया है, लेकिन नए की विवेक्षा उसी नहीं करी कि ये पचने में ये लोग प्रभु डाले पाएंगे, इसलिए उनको तो उतना ही पहले समझना है प्रयोजन तो। तो अगर मैं पुण्य पाप करूंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा, क्या मैं पुण्य करूंगा तो इसको भोगना पड़ेगा मोक्ष नहीं मिलेगा, पाप करूंगा तो जिसको उसको भोगने के लिए रुकना पड़ेगा मोक्ष नहीं मिलेगा, इतना पहले समझना उसको प्रयोजन है वो बात है। तो समय सारे वाले बात पूछे कि तो कुछ नहीं से वो भोगता नहीं है, कुछ नहीं से भोगता भी है, क्या है हम लोगों ने ये भी पढ़ा और वो पकड़िया सीता है क्या हमारे भगवान कहते हैं आजकल श्रीमद राजचंद्र पढ़े बिना रमेश भाई सीधा ही समय सार पढ़ लिया तो हमारे समाज की सारी समाज की हालत तो इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि कितनी बिगड़ी हुई है क्या ऐसा बोलते तो बहुत बोलने में जनता जो बोलना है वो कह देते हैं, देखो कि हमारे सारे समाज की जो हालत एक्सपोज हुई क्या काम है, पहले संघ राज बिना पड़े सीधा समय साफ कर दिया ऐसा तो क्या करता आत्मा है निमित्त नैमितिक समझ से कर्म का करता भी है, तो ये तरीके से तो प्रभाव नहीं सर वो बात को अब समय सामने तो पर देखने को लेकिन शास्त्र परिभाषा से हुआ तो अभी तरीके से जो जवाब नहीं सर मैं बड़े तरह को लेकर ये क्या बीच में आया ये क्या चीज है ये तो वो समय सामने भाषा में बात करते हैं, बाकी जो समय सार कहता है वही श्रीमद रायचंद्र जी कहते हैं, जो श्रीमद रायचंद्र जी कहते हैं कहीं भी विरोध विरोध नहीं आचार्य के भी है इस बात का विश्वास रख करके कैसे अविरोध है उतना ही समझना है, विरोध तो देखना ही नहीं है लेकिन अविरोध किस प्रकार से है उतना समझ ले वो बात बहुत चलते वो दृष्टिकोण स्कंद है बहुत परमाणु का है क्योंकि वो विजिबल है बोले बायोकुलर से विजिबल है लेकिन विजिबल तो है दिखते तो है लेकिन एक परमाणु इंद्र में उतना सूक्ष्म ऐसा एक परमाणु लेकिन दो परमाणु में वर्ण है ऐसे स्पर्श है ऐसे इसलिए उसका पता चलता है काला पीला जीव रूपी है जीव चैतन्य रूपी है प्राण जो वो बात नियंत्रण में अपन जो कहते हैं कि इतना साल हुआ उतना दिन हुआ इतना वर्ष हुआ वो हुआ वो कारण की परिणाम नहीं वो कारण को परिणाम नहीं उसको व्यवहार काल के व्यवहार काल में अपने व्यवहार में गिनती का काम हो उसकी वो बात सुनते हैं काल सत्य हो लेकिन वो तो वो प्राणु द्रव्य है न तो ये प्राणु की परिणाम ये बंधन की परिणाम जैसे हम घड़ी में कहेंगे कि वो एक घंटा ये बंधन की परिणाम सूर्य उदय हुआ तो हम नहीं कहेंगे कि ये प्रकाश का परिणाम जो है सारे लाभ तो होते हैं वह दिन है तो प्रकाश के परमाणु के हिसाब से दिन तो अंधकार के परमाणु के हिसाब से रात है तो ये जो व्यवहार काल है एक दिन एक मास एक महीने इतना साल अनंत काल मानव साल ये सब कुंडल परमाणु का परिवार से काल का काल का जो व्यवहार करते हैं इसलिए उसको व्यवहार काल कहते हैं कुछ भी बात है परमाणु है द्रव्य है उसकी परिवार अपने आप में सीमित है इससे बाहर अपने द्रव्य से बाहर किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकाश का परिवार जाता नहीं सुता नहीं चलता ऐसी बात शांत है अनादि से भी अंत हुआ जो कि वर्तमान है और वर्तमान में आदि से अनंत है भविष्य भूतकाल है वो अनादि शांत है शांत है और भविष्य काल आदि अनंत है आदि है उसका भूतकाल दोनों काल अनंत है कौन ज्यादा अनंत है कौन थोड़ा अनंत है इससे हमें कोई मतलब नहीं इतना समझ लो बात करते का तो भेद है ना चिंता तो भविष्य की रह सकती है भिन्नता है वो तो जिसकी चिंता हम करते हैं इससे हम भिन्न है उसका कुछ लाभ नुकसान हमें हर लाभ जिसका भव होता है उससे संबंधित लाभ नुकसान हमें आ नहीं सकता है ऐसा मैंने पड़ा सोचने से पर हम तो भी तो वैसे तो वैसा रहने वाला ऐसा विश्वास है विश्वास नहीं है हम कहते हैं कि भगवान सत्य कहते हैं हम बोलते हैं कि भगवान गुरु सत्य कहते हैं लेकिन उसके बाद पर हम विश्वास कितना करते हैं वो दूसरा सवाल है मैं तो भर गया लेकिन विश्वास है तो वो तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कोई तुम्हारा तुम्हें देवता नहीं है और न कोई तुम्हारा इसमें वैसे जाने वाला है इसलिए इस बात पर तुम्हें विश्वास नहीं आया है इसलिए तुम विश्वास करो और सोच समझ कर तुम बोले से हम तो श्रद्धा से नहीं करे इसका विज्ञान सोच समझ कर विश्वास शांति तो अंदर में से प्राप्त करनी है तो अंदर भरे शक्ति में लेकिन कैसे वो उसका प्रयोग करोगे शांति Thank you. બસ આપણે એનું સ્વરૂપ સમજી લઈએ, આપણે એનું સ્વરૂપ સમજી લઈએ કે કળાનું છે અને ભગવાનનું રૂપ છે અને બધા પદાર્થોના પરિણામના એ નિમિત્ત છે. જેમ માછલી અને પાણી નિમિત્ત છે પાલનાના, પણ માછલીમાં પાણી ધક્કો મારતો નથી, પછી સામા પૂરો પણ ચાલી શકે છે, કરી શકે છે. માણસ તમે જે હાથે તમે જાય માછલી નતો ને, એટલે કાળ છે એની અરૂપદ્રવ છે, અરૂપી પર્યાય છે, એટલે વ્યવહાર કાળ છે. એ તો કુદરતની પર્યાય છે, સમય માત્રાનો એક યુનિટ છે, બીજું કાંઈ નથી. બધા કાળનું સાથે કાંઈ કોઈ ખાસ તો ઇમ્પોર્ટન્સ ધારવાનો વિષય છે, અપૂર્ણ છે. મારવાડી સમાજ ને ખંડેલવાલ करीब 32 साल की उम्र में उसने दर्शन की प्राप्ति की है. उसके पहले वो मुनि दिगंबर को बहुत किया था और हठ योग का प्रयोग भी बहुत किया था, ध्यान वगैरह का. मैंने आत्म शांति के लिए वो खोज करते थे, सम्यक दर्शन पाने के पहले वो आत्मशांति के लिए बहुत प्रयास करते थे, बहुत खोज करते थे, तीव्रता से वो खोजी परिस्थिति में रहे हुए हैं. ये इनकी मुमुक्षु की भूमिका है. अब क्या है कि जिसको आत्मशांति चाहिए ही किसी भी कीमत पे, ऐसा जिसका जरूरत जिसको लगती है अपनी शांति की, उसको आत्मशांति निश्चित रूप से मिलती है. ये एक कुदरती व्यवस्था है, चाहे किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, कहीं भी हो, चार गति में मनुष्य नरक देव तिरियन कुछ कहां भी हो, लेकिन जिसको आत्मशांति चाहिए, चाहिए उतना नहीं, अपने हमको तो चाहिए लेकिन कंडीशनल चाहिए कि इतनी व्यवस्था होवे तो फिर हम आत्मशांति के लिए प्रयत्न करेंगे. इतनी अनुकूलता नहीं होगी तो हम आत्म शांति के लिए नहीं प्रयत्न कर सकते. ये बात कंडीशनल इधर नहीं चलती. क्यों कि डॉक्टर के पास भी सरेंडर होना पड़ता है. जब हम रोग होता है तो उतना सरेंडर होना पड़ता है. एक मरीज को अन्न नलिका कैंसर था, तो बोले कि तुम्हारा टेस्ट करने के लिए कि वेदर कैंसर है, डिटेक्ट करने के लिए तुम्हारे सब दांत निकालने पड़ेंगे. क्यों कि फिर जो साधन है वो डालना है, उसमें तुम्हारा दांत है वो नड़ता है, बीच में काम नहीं करने देता, तो सारा दांत उसको निकाल दिया, फिर टेस्टिंग चालू किया. इतना सरेंडर होना पड़ता है, खाली टेस्टिंग के लिए, इलाज के लिए नहीं, डिटेक्ट करने के लिए बात भी थी. तो ये तो आत्मशांति, इटर्नल पीस जिसको कहते हैं, हमेश के लिए पूरी शांति मिले, इतना बड़ा फायदा के लिए आप कंडीशन रखो कि मेरी कंडीशन से मिले तो लेनी है. तो अंदर से आत्मा मना करता है कि ऐसे तो नहीं मिलने वाली, भीतर की शांति ऐसे बाहर नहीं आती. तो जब उसको किसी भी हालत में आत्म शांति चाहिए, ऐसी तीव्र परिस्थिति होगी. तीव्र परिस्थिति कैसी हुई तो बताया था कि अगर ये अशांति नहीं मिटती तो मेरा जीना संभव नहीं था, देह छूट जाता मेरा. उतनी हद तक ये प्राप्ति के लिए तमन्ना हो गई, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, मर जाऊंगा मैं, शांति नहीं मिली तो. इतनी शांति की खोज में बहुत बेचैन रहे, बहुत खोज किया, उसमें कुदरत ने क्या किया. बिना पेमेंट हमारे यहाँ से आत्मधर्म का प्रचार के हिसाब से किसी ने आत्मधर्म भेज दिया, वो ग्राहक नहीं हुए थे. लेकिन जब आत्मधर्म उसी वक्त चालू हुआ 2002 मुझे बैठे हैं 2001 के साल में, आज से 47 ईयर हुआ पहले आत्मधर्म हिंदी चालू किया सोनगढ़ से, उस वक्त प्रचार के लिए हिंदी भाषी क्षेत्र में जो भी कोई धार्मिक वृत्ति वाले हो सज्जन, उसको फ्री ऑफ चार्ज पोस्ट करते थे यहाँ से की संस्था से, तो उनको भी एक नकल आ गई और उनमें उनको लगा कि इस धर्म में जो छह आवश्यक बताया है श्रावक का कि छह प्रकार का कार्य करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, दान करना चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए, ऐसे छह प्रकार का जो कार्य है, तो उनको तो ये सब बोझा लगता था कि इतना इतना लंबा चौड़ी प्रवृत्ति धर्म में करनी तो अशांति का कारण है, शांति कहाँ है इसमें, मुझे तो शांति चाहिए। तो वहाँ एक बात आई कि नहीं, एक ही आवश्यक है, छह आवश्यक नहीं है, ये आगम की बात है, अध्यात्म में तो एक ही आवश्यक है, और एक आवश्यक से शांति मिलती है, क्या कि आत्मा में जम जाना, आत्मा में स्थिर जाना, स्थिर हो जाना। तो उसी बात पर से उनको आकर्षण हो गया कि आत्मा में कैसे जम जावे, कैसे स्थिर हो जावे, कैसे शांति मिले, इसकी कोई जानकारी शायद इधर से मिल जाएगी। गुरुदेव का फोटो था इस आत्मधर्म में, उन्होंने अर्घ चढ़ाया बहुमान से और निर्णय किया कि मुझे जल्दी से जल्दी सोनगढ़ जाना है। वो कभी आए नहीं थे, पहले ही आए और उतनी तीव्रता लेकर आए थे, उतनी गरज लेकर आए थे, तो सीधा ही सुनते ही भाषा का भी तकलीफ नहीं हुआ, वो गुजराती नहीं जानते थे, और गुरुदेव को तो क्या पता चले कौन हिंदी है कौन गुजराती, इतने समाज में बोले जब तो पता चले, वो तो बोलने वाले नहीं थे, तो इतने बाद में भी इतने मौन रहे हैं, कभी कोई बात का डिमांड नहीं किया इधर, तो भाषा भाव को पकड़ लिया, आत्म स्वभाव क्या है, ज्ञान में से आत्म स्वभाव ज्ञायक स्वभाव कैसा है, और रागादि भाव जो अपने अनुभव में आते हैं उसमें क्या दुख है, आकुलता है, क्या मलिनता है, क्या विपरीतता है, उसका भाव ज्ञान हो गया, क्योंकि तो दोनों भाव अपने में मौजूद है, ज्ञान भी परिणमता है, राग भी परिणमता है, दोनों अनुभव गोचर होता है, तो दोनों का स्वभाव समझ में आ गया। स्वभाव समझ में आते ही अपना अस्तित्व अपना स्वभाव में है, राग में मेरा अस्तित्व नहीं है, भेद ज्ञान चालू कर दिया, और उतनी तीव्रता से भेद ज्ञान किया, फिर रात्रि को उनको नींद नहीं आवे, और चिंता होती है जब भी नींद नहीं आई, तो उसको तो शांति की चिंता थी ही, तो मुझे मेरी शांति चाहिए, तो नींद तो आती नहीं थी, वैसे ही कई दिनों से नींद नहीं आते थे, तो उतने आत्मा में स्थिर होने के लिए, ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिर होने के लिए अपना पूरा जोर से एकाग्रता का प्रयत्न किया, प्रयत्न हुआ किया मतलब क्या हुआ, सहज रूप से अनुभव कर लिया। एक ही दिन का प्रवचन सुन करके गुरुदेव का रात्रि को इस समिति में, ये जो ऑफिस वाला अंदर का कमरा है उस कमरे के कोने में, वो रात्रि को वहाँ, पहले वो बात थी कि जो लोग आते थे यात्री वहाँ रात्रि को वहाँ सोते थे, बाहर झीमते थे, बहुत कम लोगों का आवागमन था, इधर इतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, दो पाँच दस आदमी आते रोज सोने वाले, तो वहाँ बड़ा कमरा था, 20-25 आदमी सो सके उतना, तो वहाँ सोए हुए थे, वो तो एक कोने में जा करके ध्यान में बैठ गए, स्वरूप में एकाग्र होकर के आपने आत्म शांति को प्रकट किया। तो ये एक गुरुदेव तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर के पुराण लिखे जाएंगे, जैसे महावीर भगवान के हैं, आदिनाथ भगवान के हैं, वैसे इनके भी गुरुदेव का भी सूर्यकृति भगवान होने वाले हैं, इनके पुराण लिखे जाएंगे, उसमें ये अच्छा पात्र है जिन्होंने एक ही व्याख्यान सुन करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की, और उतना बाद में उतना पुरुषार्थ किया कि अपने जो बंधे हुए कर्म थे उसकी स्थिति कम हो गई अपने शुद्धि के पुरुषार्थ से, तो अभी देवलोक में गए हैं, तो 20 साल तक अपनी साधक अवस्था में रहे, आर्थिक परिस्थिति कमजोर थी इसलिए वो अपना वतन छोड़ करके, अजमेर को छोड़ करके वो कलकत्ता गए, अनुभव होने के बाद दूसरे तीसरे साल में, तीन साल के बाद वो कलकत्ता गए, वहाँ काम अपना कारोबार वहाँ जमाया, आज भी दो भाई उनके कलकत्ता हैं, दो बम्बई में हैं, तो वहाँ भी वो बहुत दूर हो गए फिर सोनगढ़ से आ नहीं सके, तो उसके लिए उनका वियोग भी महसूस होता है, इनके पत्र में ये बात भी दिखने में आती है। इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि अभी देवलोक में गए हैं, जहाँ गुरुदेव गए हैं वहाँ वो गए हैं, वहाँ से निकल करके मनुष्य हो गए, और फिर चारित्र मैंने मुनि दशा प्राप्त करके विशेष शांति प्राप्त करके पूर्ण शांति में मोक्ष में चले जाएंगे। ये 5 मिनट में इनका संक्षेप में इतिहास है, एक ही भगवान की है। इतना जबरदस्त कार्य इनका चल रहा है, चालू किया, अभी चालू ही है, वहाँ भी चालू है, चालू रहेगा जहाँ तक पूर्णता होगा। बीच में विश्राम लेने वाले नहीं है वो, तो वैसे ही वो पूर्ण हो जाएंगे। तो उनका विस्तार से जो जीवन दर्शन है वो भी सेकंड एडिशन जो ध्रुव दृष्टि प्रकाश की अभी निकाली है, दो तीन महीने पहले 6 महीने पहले वो भी अवेलेबल है वहाँ विचार विभाग में। पहले किताब के पहले उसका जीवन परिचय दिया है विस्तार से, कैसे कैसे प्रसंग बने, किस किस प्रकार के प्रसंग बने, करीब 32 पेज में लिखा हुआ है। क्योंकि पहले एडिशन वक्त हम इतना परिचय उनके परिवार से हम परिचित नहीं थे, ऐसे मित्रता थी लेकिन परिचित नहीं थे उतने। बाद में ये रमेश भाई हमारे संघ में काफ़ी आते रहते हैं, बहुत सी बातें जानने में मिली और आपस में बहुत सी चर्चा हुई। तो ये दूसरा संस्करण में उसका जीवन चरित्र विस्तार से दिया है, जिसको पढ़ना हो
ऐसे पढ़ना। गुरुदेव ने भी कुछ कहा है उनके बारे में?
अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग बना कि एक दिन गुरुदेव सुबह 10 बजे खाना खाते थे। गुरुदेव जैसे अपन 11 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते थे। खाने के बाद आराम करने के पहले 20 मिनट करीब वो चक्कर लगाते थे हजम होने के लिए, परिश्रम थोड़ा शरीर को चाहिए। तो ये जहाँ अपन वो प्रवचन सुनते हैं वो स्वाध्याय मंदिर में ही चक्कर लगाते थे, फिर अपने कमरे में चले जाते थे जहाँ भी वो कमरा है अभी। तो हम भी कभी कभी साथ में घूमते थे, बातें करते थे उनके साथ। तो एक दफ़े कोई बात खास नहीं चल रही थी, सब मौन ही मौन चल रहे थे, 7-8-10 आदमी थे, मैं साथ में चलता तो बिल्कुल नज़दीक में वो खड़े रह गए। खड़े रह करके मेरे, मैं तो साइड में चलता था, वो घूमे मेरे सामने, आमने सामने हो गए और फिर बोले मुझे यहाँ से पकड़ा, ध्यान से सुनो, यहाँ से पकड़ लिया, सुनो ये अंदर से बात आई है। क्या बोले? ये आत्मा में से अंदर से बात आई है, मैंने गहरा ज्ञान से वो बात आई है। ये न्यालचंद जी सोगानी है ना, वो अभी देवलोक में गए हैं, वैमानिक देव में गए हैं, वहाँ से निकल करके मैंने यहाँ का आयु पूरा करके झपट करेंगे, गुजराती काठियावाड़ी भाषा में झपट करेंगे, मैंने बहुत तेजी से पुरुषार्थ करेंगे और मनुष्य होकर के उसी भाव में वो मोक्ष में चले जाएंगे, ऐसा हमारा ज्ञान में आया है। बहुत गंभीरता से ये बात उनको सुनाई, आगे इतना सुनाया कि हमारे तो अभी 4 भाव बाकी है, हम आज से 4थे भाव में, इसके बाद 4थे भाव में हम तीर्थंकर होने वाले हैं। जब हम तीर्थंकर होंगे, अब जब दीक्षा लेंगे तीर्थंकर के भाव में, तो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो नमो रियंताणम नहीं बोलते हैं, क्योंकि खुद ही जगत गुरु है, वो तो नमो सिद्धाणम ऐसा उच्चारण करते हैं। तो हम भी दीक्षा के काल में नमो सिद्धाणम ऐसा जब बोलेंगे ना, तो हमारा नमस्कार उसको पहुंचेगा, क्योंकि वो तो सिद्ध हो गए होंगे हमारे पहले, तो पहले हमारा नमस्कार उसको पहुँच जाएगा। इतने सरल थे गुरुदेव कि अपना शिष्य होते हुए भी उसका नमस्कार के विषय में जो ज्ञान आया उसको प्रकट कर दिया सब लोगों के सामने, छिपाया नहीं है। और उसमें अपना कोई ऊंच नीच का विचार ज्ञानियों को तो होता ही नहीं है, किया भी नहीं है। प्रवचनों में भी ये बात चली है, लेकिन मेरे से तो पर्सनल हुई है, मैंने किसी से सुनी नहीं है, मैंने तो डायरेक्ट ये बात कर दिया है। एक विशिष्ट व्यक्ति है हमारे समाज के, इसका बहुमान उनको सहज ही आ सकता है और होना भी चाहिए। वो तो गुरुदेव का बहुमान है कि ऐसा जबरदस्त इनकी वाणी का स्पर्श होते ही जिसको आत्मज्ञान होता है, तो वाणी में कितना जबरदस्त निमित्त तत्व है ये सिद्ध होता है यहाँ से कि गुरुदेव की वाणी कितनी पावरफुल थी कि किसी एक जीव को एक व्याख्यान में सम्यक दर्शन को पहुंचा दे। ये गुरुदेव की वाणी का गौरव है, गुरुदेव का गौरव है, सुगानी जी का गौरव है, सभी की बात।
आप
हाँ ये पद लिखा है, खुद ने भी लिखा है कि आपकी वाणी का स्पर्श होते ही मानो विश्व की उत्तम से उत्तम वस्तु मुझे मिल गई। ये उसने पत्र में भी उल्लेख किया है अपने पत्र में, ये बात है। हाँ सोनगढ़ में किसी और को नहीं हुआ है, बेंसरी को भी वाकानेर में हुआ है, सोनगढ़ में किसी को अगर सम्यक दर्शन हुआ है या गुरुदेव की वाणी की सफलता अगर किसी ने कर दी है तो ये न्यायचंद्र जी सोगानी है कि वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेक है। उन्होंने तो बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हमारे दिलीप भाई सब रिकॉर्ड तैयार करते हैं आजकल कि दृढ़दृष्टि प्रकाश ऐसा ग्रंथ है कि जिसकी हस्तलिखित 1000 प्रत शायद अपने समाज में मिलेगी। क्यों कि पहले तो गुरुदेव ने बेचाण में रखने नहीं दिया, अपने हाथ से दिया, जो लायक है उसको देंगे, साधारण को नहीं देंगे, तो लोगों ने लिख लिया, हजारों नकल हो गई है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि इसे ग्रंथ की लिखित मिलती है
મહાવીર ગુરુ